बोले राम जी महाराज की। श्री जयमलदास जी महाराज की। श्री हरिरामदास जी महाराज की। श्री रामदास जी महाराज की। श्री दयालदास जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। अनंत कोट संत महात्माओं की जय। भक्त वत्सल भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। अपने अपने इष्ट गुरुदेव की। राम राम। जात पात बंधव कुल साथी। सुख संपत जन ही मम आथी। चाले पंत संग रहूं जाके। बान पान गे आगे ताके। भगवत भक्त वरण या शर्मा। भजे निरंतर उखट करमा। पोत पोत परस पर संगा। सूर किरण जो नीर तरंगा। अनेक आर नहीं गिन हूँ। आपन भवन इच्छा में भन हूँ। अनुसार सम ग्रंथ अनेका। मुनि जन कविता गाय वसेका। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा और परम आराध्य इष्ट और गुरुदेव के चरणों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर अनंत कोटि संत महापुरुषों के चरणों में वंदन करने के बाद प्रभु के चरणों में अगाध स्नेह भाव रखने वाले आबाल वृद्ध सब भाई एवं भाइयों का यथा योग्य सम्मान कर अपने समय के सदुपयोग की दृष्टि से सत्पुरुषों की वाणी के माध्यम से कुछ हृदय में प्रकट होने वाले वही भाव जो सत्पुरुषों ने कृपा करके सुनाए और सुने जितना समझ में आए वो प्रकट करने की चेष्टा की जा रही है। हमारे संतप्त जीवन में महापुरुषों के वचन ही एक शांति प्रदान करने वाले दिव्य औषधि का काम करते हैं। दिव्य औषधि का स्वरूप है सत्पुरुषों की वाणी। संसार के माया जाल में जंजाल में हम जकड़े हुए हैं। चारों तरफ से जलनी जलन फैली हुए। दास जत जग माया दुखत तीन लोक त्रय ताप। तीनों ही लोक ताप में जले जा रहे हैं। उस जलते हुए ताप को मिटाने के लिए सत्पुरुषों के वचन अमृत का काम किया करते हैं। यदि हम श्रद्धा भाव से उन्हें श्रवण कर और हृदय में धारण कर ले भले ही कुछ शब्द ही धारण करें। ज्यादा की आवश्यकता नहीं। थोड़े भी शब्द यदि धारण करने की हमारी आदत पड़ जाती है तो थोड़े से भी बहुत ज्यादा लाभ हो जाता है। कम होने पर भी बीज छोटा होता है लेकिन एक बटक बीज जैसा आकार पसरियो तीन लोक विस्तार। वर्दे का बीज बट का बीज बहुत छोटा होता है बहुत बारीक होता है परंतु जब वो पैदा होता है आगे चलकर के वट का वृक्ष बनता है कितना विशाल काय बन जाता है। होते होते कई जगह तो कई किलोमीटर तक फैल जाता है वट वृक्ष। तो इस प्रकार शब्दों की भी इसी प्रकार शक्ति है उनका प्रभाव है। यदि हमारे हृदय में वो बोए जाए हम उनको पनपाने लगे हैं तो उनका प्रभाव हमारे को दिखने लगेगा अनुभव में आ जाएगा। प्रसंग अपने सत्पुरुषों की दयाल जी महाराज की वाणी में ग्रंथ गुरु प्रकरण का कल चालू किया था और उसी में जो ग्रंथ गुरु प्रकरण के कुल 12 प्रकरण हैं एक से लेकर के 12 संपूर्ण तो बहुत बड़े हैं फिर भी उनमें से कुछ एक अंश जो हमारी आसानी से समझ में आ जाए समझ सकें वे हम सुनाने की चेष्टा में अपने समय का सदुपयोग करते हैं। तीसरे प्रकरण का प्रसंग चल रहा था कल, जिसमें भगवान अपने भक्त के अधीनता की बात बताते हैं। मैं भक्तों के अधीन हूं, जात मेरे जाति है तो संतों की, पाती है तो संतों की, बंधव है तो संत महात्मा। क्योंकि संत अपना संसार का सारा जात पात का संबंध केवल परमात्मा के साथ में जोड़ देते हैं कि और किसी के साथ नहीं। अचित्र गोत होता है संतों का। जैसे आप लोग कोई अनुष्ठान करवाते हैं तो वहां पंडित जी पूछते हैं कि अपने गोत्र का उच्चारण करो, तो गोत्र का उच्चारण जिसका जैसा है आप अपने हिसाब से करते हैं। पर संतों के पास में जब बात पूछी जाती है तो संतों का गोत्र होता है अच्युत्र गोत। अच्युत्र एक परमात्मा का गोत्र जो है, तो जात नहीं जगदीश के जग के कहांति होय, जात पात कुल कीच में डूब मरो मत कोय। जात हमारी आत्मा, ये है महापुरुषों का सिद्धांत। तो संत महात्मा अपना जाति पाति का संबंध परमात्मा से जोड़ देते हैं, तो परमात्मा ही कहते हैं कि उनका जो जाति पाति का वो मेरा ही है, दूसरा का है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे सौंप दिया। सुख संपत्ति है संतों के पास में तो मेरी, और उनके पास में दुख है तो वो मेरा। अब कोई बताओ दुख को अपने पास में रखना चाहेगा क्या? तो मेरा दुख है तो मैं अपना दुख उन संतों के पास में कैसे रहने दूंगा? वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे दूर नहीं कर सकते, तो वो दुख मुझे दूर करना पड़ता है। ये भगवान का वचन है कि मैं इस प्रकार उनके सदा साथ रहता हूं। चाले पंत, वे जब मार्ग में चलते हैं तो मैं उनके आगे आगे चलता हूं मार्ग दिखाने के लिए, आपके लिए ये मार्ग इधर चलिए। सूरदास जी जब चले जा रहे थे तो उनकी लकड़ी पकड़ करके वे ही श्याम सुंदर आगे आगे चल रहे थे मार्ग बताने के लिए, कहीं मार्ग भटक नहीं जाए, कोई तकलीफ नहीं पड़ जाए। प्रकट भले मत ओढ़े दो, लेकिन चलते आगे आगे। चाले पंत संगरू जाके, मैं उनके सदा साथ में रहा करता हूं। बान पान अपने हाथ में, उनकी सुरक्षा की डोर लेकर के चलता हूं। हाथ में धनुष बाण लिए चलता हूं, कहीं इनके कोई संकट नहीं आ जाए, यदि संकट आया तो मैं उसे दूर करूंगा। तुलसीदास जी का प्रसंग सब लोग जानते ही हैं। भक्त तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की, रामचरितमानस बनाया, तो कुछ पंडित लोग उनसे नाराज हो गए। रामायण की मान्यता ज्यादा बढ़ने लगी, लोग बाग रामायण को ज्यादा पूछने लगे। पंडितों ने कहा ये एक हिंदी का ग्रंथ है, इसको इतना पूछ रहे हैं कि तुलसीदास जी के इस ग्रंथ को मंगा करके गंगा में डुबो देंगे, तो डूबने के बाद में नहीं तो ये ग्रंथ रहेगा, नहीं कोई पाठ कर सकेगा, नहीं कोई वो तुलसीदास सुना सकेगा। चोरी करने के लिए कुछ चोरों को पैसे दिए और कहा तुम रात के टाइम तुलसीदास के कुटिया पर जाओ और वहां से ग्रंथ चुरा करके लेके आ जाओ, तुम्हें डबल पैसे देंगे, चौगुने पैसे देंगे, इतना पैसा देंगे, इनाम देंगे, सारी बातें बताई। दो चोर चोरी करने का काम ही था, उनको ठीक है हम रात को पूरी रात जागरण करके जैसे तैसे करके ले आएंगे। वे गए चोर कुटिया पर, तुलसीदास जी कुटिया पर। तुलसीदास जी तो राम आश्रय सोरो दे गोद में शीश, राम जी के आश्रय में उनकी गोदी में सिर देख करके सो जाते हैं। जो कोई पूत कपूत वह तो गुना करे बख्शीश, कोई कपूत होगा तो उनके गुना को भगवान माफ करेंगे। ऐसे में प्रभु के आश्रय पर तुलसीदास जी सो रहे हैं और रात्रि के समय चोर आए। पिछवाड़ी जानते हो चोर तो अंधेरा ही चाहते हैं, दुनिया चाहती है प्रकाश पर चोर चाहते हैं अंधेरा, दुनिया चाहती दिन चोर चाहते हैं रात, रात पड़े तो हम आसानी से चोरी करें। कुटिया के पिछवाड़े गहरे अंधकार की प्रतीक्षा में आधी रात हो जाए तो बाद में हम अपने चोरी का काम करेंगे, क्योंकि रात के चार पहर होते हैं, चार पहर में चार दिनों का अलग अलग अधिकार है। पहले पहरे सब जग जागे, रात्रि का पहला पहर होता है 6 बजे से 9 बजे तक का टाइम, इस पर सब दुनिया जगती है, सब अपने काम धंधे में खाने पीने में कुछ न कुछ लग जाती है। अब दूसरा पैर आता है 9 बजे से 12 बजे तक का, इसमें संसार के भोगी लोग जगते हैं, बाकी लोग सो जाते हैं। लेकिन 12 बजे के टाइम में बाद में सबकी 12 बज जाती है, सब नींद में सो जाते हैं, तीजे पहरे चोर जागे। तीसरा पहरे होता है जब 12 से 3 बजे का टाइम, उसमें चोर लोग जगते हैं, अपने चोरी का काम करते हैं। और चौथे पहरे योगी, जब रात्रि का चौथा पहर आ जाता है, सुबह 3 बजे से 6 बजे का टाइम, साधु पुरुष उठ करके भगवत भजन किया करते हैं, भगवान नाम का जप करते हैं, ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार ये चोर रात्रि के तीसरे पहर में सक्रिय ज्यादा होते हैं। तो उस समय चोरों ने विचार किया, रात्रि का समय हम जाकर के चोरी का काम कर लेंगे। जो ही कुटिया के पास में गए तो उनको दिखा कि यहां तो कोई लाइट लगा रखी है, लाइट लग रही है, जबकि कोई लाइट नहीं, अरे मून लाइट भी नहीं, डिम लाइट भी नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई लालटेन नहीं और कोई दीपक नहीं, फिर भी वह प्रकाश दिखाई दिया। अरे आधी रात में प्रकाश कहां से आया, जरा आगे बढ़ करके देखें। तो पिछवाड़ी झुके हुए जो है थोड़े सामने की तरफ आए तो 2 पहरेदार हाथ में धनुष और बाण लिए हुए राजकुमार उस कुटिया के सामने इधर से इधर मार्च कर रहे हैं। एक इधर से इधर आ रहा है, एक इधर से उधर जा रहा है। तभी तो ये क्रिकेट वाले भी डबल खेलते हैं, इधर वाला इधर दौड़ता है, उधर वाला इधर दौड़ता है, दोनों ही एक दूसरे के आपस में क्रॉस करते रहते हैं, बराबर उनका आना जाना चल रहा है। चोरों ने देखा शायद कोई पहरेदार आगे होंगे, अभी थोड़ी देर ठहर जाए, बाद में करेंगे, पीछे जाके बैठ गए। कुछ देर बाद में फिर आए तो भी वो चोर पहरेदार जैसे कहते थे वहां पर अपना पहरा चौकीदारी कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जाके फिर आए तो भी वैसे के वैसे। बार बार उन पहरेदारों को देख करके चोरों का दिल एकदम बदल गया कि ऐसे कैसे ये पहरेदार, अरे देखा सुना जाता है सरकारी पहरेदार भी होते हैं, थाने के पहरेदार भी होते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं, भले ही कोई बंदूक उठा के लेके चले जाओ, लेकिन ये सोते ही नहीं है। इनको देखने से और ही प्रकार के विचार आते हैं, प्रकाश स्वाभाविक चारों तरफ फैल रहा है, ऐसे आदमी कौन है। इस प्रकार वे रात भर वहां गए, वापस आए, गए कुछ पता चला नहीं। सुबह का टाइम हो गया, तुलसीदास महाराज उठ गए, बैठ गए, भगवत भजन में ध्यान में तल्लीन हो गए, नाम जप करने लगे। चोर ने देखा अपना टपेरा खत्म हो गया, चलो। वे गए, दिन उगने के बाद वापस आए, तुलसीदास जी को प्रणाम करके पूछा, महाराज बाबा रात में आपने ऐसे पहरेदार इनको रखा है, वो कहां के रहने वाले हैं, कितने दिन का देते हो, क्या बात है, सब बात है, हकीकत उनसे पूछी। कहा भाई मेरा तो कोई पहरेदार नहीं है, कोई पहरेदार नहीं है, राम बोलाऊ सात उम्र सदा संगे सुकरास, सजन बंधु बेली कुटुंब राम रतन धन पास। हमारे तो केवल भगवान नाम के सिवाय दूसरा कोई नहीं तो पहरेदार है, नहीं कोई दूसरा हमारे पास में धन है। अरे नहीं महाराज, हम चोर हैं, दिल बदल करके सच्चाई पे आ गए। कहा रात को हमने बहुत कोशिश की आपके कुटिया में चोरी करने की, परंतु जब भी आवे ये पहरेदार घूमते घूमते देखे, पहरेदार घूमते घूमते, अरे कौन से पहरेदार महाराज, 2 पहरेदार थे वो, एक भी नहीं, एक गोरा रंग एक सांवला रंग, हाथ में धनुष और बाण लिए हुए इधर से इधर आ रहे थे। तुलसीदास जी ने चोरों के पैर पकड़ लिए, भैया तुमने उन पहरेदार के दर्शन कर लिए, भाग्यशाली हो। वे ठाकुर जी भगवान स्वयं जिनका मैं नाम लेता हूं, जिनकी भावना रखता हूं, वे कितने कृपालु हैं, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें तो दर्शन दे दिए, मुझे अभी उनके दर्शन नहीं हुए, धन्य भाग भाई हो। तुलसीदास जी पैर पकड़ता चोरों को, चोर पैर पकड़ता तुलसीदास जी के, महाराज आपकी कृपा से हमें उनके दर्शन मिल गए, क्योंकि आपकी कृपा से हम उनका आपके हमारे को दर्शन हो गए। इस प्रकार आपस में भाग्य स्नान करते। उस दिन के बाद में चोरों ने अपने चोरी का धंधा छोड़ दिया और साधु पुरुष बनकर के भगवत भक्ति में लग गए। तो भगवान ने ये बात में बाण पान करे आगे तक, मैं उनके आगे हाथ में धनुष बाण लिए लिए चलता हूं, घूमता हूं, कहीं धनुष लाने के लिए बाण लाने के लिए दूर जाना नहीं पड़े, कोई संकट आया तो मैं उसे दूर कर दूं। भगवान भक्तों के जो वर्ण आश्रम होता है वो वर्ण आश्रम ही मेरा वर्ण आश्रम है, वे केवल मेरा भजन करते हैं तो मैं केवल उनका भजन करता रहता हूं। आपस में हम दोनों का इस प्रकार मिलना जुलना है, एकता का संबंध रहता है। भैया क्या कहूँ, सूरज और जैसे किरण में एकता है, अलग नहीं, सूरज अलग नहीं और सूर्य की किरणें अलग नहीं, पानी और पानी की लहरें जैसे अलग नहीं, दिखता था लहरें लेकिन पानी से अलग नहीं है, इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों से कभी भी अलग नहीं हूँ। जब भी उनको जरूरत होती है तो मैं उनकी भावना को और उनकी इच्छा को पूर्ण किया करता हूँ, ये मेरा नियम है। जहाँ कहीं भी वे जाए मैं उनके साथ साथ चला करता हूँ। अब प्रसंग यहाँ अत्री ऋषि के युवा पुत्र दुर्वासा जी का बता रहे हैं, अम्बरीश राजा वाला प्रसंग महाराज ने कथा प्रसंग के माध्यम से वर्णन किया है। सूर्यवंश में भागवत की कथा आप सुनते ही है, उसमें अम्बरीश राजा का कथा प्रसंग आता है, वही प्रसंग इस प्रकार वर्णन करते हुए महाराज ने लिखा है, अत्रीक सूत दुर्वास होये पुण्य तप बलिष्ठ सिद्ध वचन होशोय सो ब्रह्म वंश कुल सिद्ध मोर विद वेद नीत सम नहीं और सूर पवन जल अगन तिष्ट सब लोकपाल आधीन यस्त समीप एक समय भवन आये महीप सूरज वंश नभ नाभ राज अमरीक जासुत भक्तबाज। नाभि राजा के जो पुत्र हुए है अम्बरीश राजा, अम्बरीश का मतलब है कि जिसके मस्तक पर भगवान विराजमान हो, अम्बर मतलब ऊंचा ऊंचा शरीर में, जो शरीर में सबसे ऊंचा भाग है मस्तक पर, और मस्तक पर जिसने भगवान को विराजमान कर लिया वो है अम्बरीश। तो सूर्यवंश में अम्बरीश नामक राजा हुए हैं, बड़े भगवत भक्ति करने वाले, भगवान की दृढ़ निष्ठा रखने वाले और परम प्यारे भगवान के। वे जब साधन निष्ठ थे एक बार भगवान उनके सामने प्रकट हुए, भगवान पर प्रकट हुए, अम्बरीश ने प्रणाम किया और उनके हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए। अपलक दृष्टि से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है हृदय हृदय में, हृदय पुलकित हो रहा है, शरीर रोमांचित हो रहा है, हाथ जोड़े कुछ बोल नहीं सके, बोलना चाहते हैं वाणी अवरुद्ध है। इतने में भगवान ने कहा, भक्त अम्बरीश मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही संतुष्ट हूं, कुछ वरदान मांगो। कुछ वरदान मांगो, क्या चाहते हो, क्या इच्छा है तुम्हारी? अम्बरीश जी ने कहा, महाराज मुझे जब आप मिल गए तो और मुझे क्या चाहिए, मुझे संसार के किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपने वचन कहे कि तू मांग रहे तो आपके वचन को भी मैं निरर्थक होना देना नहीं चाहता, आप कृपा करके मुझे देना चाहे तो ऐसा वरदान दो मेरी, देखो मांग क्या करते हैं विचित्र ध्यान रखना, मेरी प्रजा का सारा दुख तो मुझे मिल जाए, मेरा सारा सुख मेरी प्रजा को मिल जाए, प्रजा का जितना भी दुख है वो मुझे मिल जाए, मैं भोग लूं, क्योंकि मैं राजा हूं, राजा प्रजा का प्रतिनिधि हूं, तो मैं अकेला मौज करूं प्रजा दुखी हो, ये उचित थोड़ा ही है। मेरी प्रजा का जितना भी दुख है वो मुझे मिल जाए, क्यों, प्रजा का जो उपज का हिस्सा भी तो राजा लेता है, छठा अंश राजा लिया करता है उपज, तो जब मैं वो लेता हूं तो उनका दुख दर्द कौन लेगा, वो पूरी प्रजा का सारा दुख तो मिल जाए मुझे, मेरा सारा सुख ये मिल जाए प्रजा को, ये चाहिए महाराज, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने विचार किया, बड़ी विचित्र मांग करने वाला मिला भक्त भी तो, अरे दुख को कौन चाहता है, अपन से कोई कहे कि ये सामने दुख खड़ा है लेने को तैयार हो क्या, नहीं नहीं दूर वहां, कोई पास में लेने को तैयार नहीं, केवल साधु पुरुष ही इस प्रकार की कामना कर सकते हैं, सुख ऊपर शिला पड़ो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। कबीर मैं सुख सेती जाया था विच में आया दुख, तू सुख जा घर आपने मेर मेरा दुख। जाते जाते सुखी सुख के साथ में कबीर जी के मैं जा रहा था, बीच में दुख राम आ गया, तो भैया सुख आपके घर जाओ, मेरा सच्चा साथी अब आ गया है बस, क्योंकि भगवान की प्राप्ति दुख से ही होगी, सुख से नहीं होगी, उसे विदाई देते। तो अगर सद प्रजा का सारा दुख मुझे मिल जाए और मेरा सारा सुख प्रजा को मिल जाए। भगवान ने विचार किया कि जिसके हृदय में इस प्रकार का प्रजा का हित भरा हुआ हो, प्रजा को जो सुखी देखना चाहता हो, वो कभी भी संसार में दुखी हो नहीं सकता, वो संसार में दुखी हो ही नहीं सकता। अब मैं उनका दुख इनको कैसे देऊं? इस प्रकार भगवान ने विचार किया कि ऐसा करो, इसको तो दुख देना नहीं, और प्रजा को कोई प्रकार का दुख है उसकी खोजबीन रखने के लिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र वहां रख दिया कि सुदर्शन ही आपके पास में रहेगा, प्रजा के सुख दुख की ये खोज खबर लेता रहेगा, और आपके लिए प्रजा का सुख दुख ये इसका खोज करने के बाद दुख का निवारण करेगा और सुख समृद्धि से प्रजा को संपन्न करेगा। इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए आपके यहाँ बॉडीगार्ड के रूप में मैं ये सुदर्शन को रख देता हूँ। वो सुदर्शन को उन्होंने अम्बरीश राजा की सेवा के लिए रख दिया वहां पर। सुदर्शन याद रखना, जिसकी दृष्टि शुभ है वो है सुदर्शन, आंखों में पवित्रता भरी है, आंखों में निर्मलता भरी है, आंखों में तेज भरा है, वही सुदर्शन है। जिसको सभी में अच्छे अच्छा दिख रही है, सब में भलाई दिखे वो सुदर्शन, सब में भगवान को देखे वो है सुदर्शन। क्या हमारी दृष्टि ऐसी है? हम देखेंगे किसी का उसमें ये अवगुण भरा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो कपटी है, झूठा है, वो नकता है, ऐसा ऐसा, सबके अवगुण ही अवगुण देखेंगे, किसी का गुण हमें दिखेगा नहीं? बताइए जहां हमारे पास में सुदर्शन का, और सुदर्शन नहीं तो हमारा दुख दूर होने का कौन? वो सुदर्शन आ गया उस दिन हमारा सोच में दुख दूर हो गया, कोई प्रकार का दुख पास में रहेगा ही नहीं। अम्बरीश राजा के पास में सुदर्शन जी इस प्रकार विराजमान है, और प्रजा की दृष्टि में, हरेक की दृष्टि में भगवत दृष्टि भक्त भावना, इसलिए उसके राज्य में दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। फिर भी पहरेदार को तो अपना काम करना ही पड़ता है ना, ऑन ड्यूटी रहना ही पड़ता है। अम्बरीश जी भगवत भक्ति में तल्लीन रहा करते थे, समय समय पर राजकाज करना और अधिक अधिक से समय में भगवान के भजन में लगे रहना। संसार का घर कुटुंब परिवार का भी उनको कोई पता नहीं, कितनी औरतें हैं, कौन कैसी है, सुखी है दुखी है, उनको कोई पता नहीं, केवल भगवान के भजन में अपना ज्यादा समय लगना। राजा के इस प्रकार महिमा की बात एक राजकुमारी ने सुन ली, किसी राजा की राजकुमारी ने सुनी कि अम्बरीश राजा बहुत भगवान की भक्ति करने वाले हैं, राजा लोग ऐसा आराम करने वाले ज्यादा मिलेंगे। आप अपने घरों को देखो, घरों में ऐसा आराम की चीजें इतनी नहीं मिलती जो राजाओं के महाराजाओं के महलों में मिलेगी, देखने की सुनने की भोग की हर प्रकार की चीजें वहां ज्यादा से ज्यादा है, और दुनिया ऐसी उस देखने के लिए तुम किले में जाती, और किले में है क्या, है तो मकान ही रहने के आखिर में। तो राजा लोग रहते थे ऐसा आराम पूर्वक रहते थे, तो राजा लोग तो प्राय करके ऐसे सुख भोग में भोगी बने रहते हैं, परंतु उसने महिमा सुनी कि अम्बरीश राजा बड़ा ही भगवान की भक्ति करने वाला है। वो भक्ति संस्कार वाले थी, उसने मन में विचार कर लिया कि जब कभी पिताजी मेरे शादी का प्रस्ताव रखेंगे तो मैं तो उनके साथ में शादी की बात करूंगी। कन्या बड़ी हुई, पिता ने शादी की चर्चा करनी चालू की, पुत्री ने भी जवाब दे दिया, पिताजी शादी आप यदि मेरा करना चाहते हैं तो आप केवल उस जगह कीजिए, और मैं कहीं शादी नहीं करूंगी, किसी के साथ में मेरे संसार का संबंध नहीं करना है। भक्त के घर जाएंगे तो उसमें जीवन सफल होगा, ये लोक सुधरेगा, परलोक सुधरेगा, और संसारी भोगों में जाएंगे, भोग के यहां पर पड़ेंगे, भोग में पड़ेंगे तो नरक के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, इसलिए मुझे तो वही संबंध करो। पिता ने पुत्री की भावना देख करके नारियल लेकर के वहां आदमी को भेजा, पंडित जी को भेजा, पंडित जी आप जाइए और ये नारियल मेरी तरफ से इस कन्या के शादी के लिए अम्बरीश राजा को पहुंचा दीजिए। वे गए पंडित जी वहां राजा के पास, राजा ने पंडित जी का स्वागत सम्मान किया, आइए महाराज कैसे आना हुआ, अपना कारण बताया, उद्देश्य बताया, बैठाया। अब पंडित जी ने अपने जो भावना थी वो भावना उनके सामने रखी कि ये बात है, ये प्रस्ताव लेकर के मैं आया हूँ और राजा की कन्या आपसे विवाह करना चाहती है, उनके लिए आपको स्वीकृति प्रदान करनी है, नारियल स्वीकार कीजिए। राजा ने हाथ जोड़ के जवाब दे दिया, महाराज अभी मेरे आगे रणवास में करीब 20-30 रानियां बैठी है, लेकिन कौन सी कहां की रानी कैसी है मैं एक का चेहरा भी देखने वाला नहीं, देखता नहीं, मैं कभी मिलती नहीं, किसी से मिलने के लिए मेरे पास में फुर्सत नहीं है, तो अब वो मेरे यहां आकर के करेगी क्या? जब मुझे आगे वाले को मिलने से फुर्सत नहीं है तो उससे मिलने की फुर्सत कहां रहेगी? इसलिए मैं क्षमा याचना करता हूं, मैं इस नारियल को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं, और आप उससे कह दीजिए कि संसार के जिस व्यवहार के लिए तुम शादी करना चाहती हो वो वहां मिलने वाला नहीं है, और किसी भी जगह जहां ठीक लगे वहां पर तुम अपना संबंध कर लो। पंडित जी को भोजन प्रसाद करने के बाद में विदाई दी भी, पंडित जी लौट करके चले आए आ गए। अब जब पंडित जी वापस चले आए, राजा को ये समाचार कहा, राजा ने बेटी को बुला करके बात भाई बेटी की बात ऐसी है, वो तो मानते नहीं है, क्या करें, तेरी भावना उनको पसंद नहीं है। उन्होंने कह दिया तुम्हें संसार के व्यवहार के लिए जहां शादी करनी है तो और किसी जगह जाकर के करो। कन्या ने कह दिया कि देखिए मेरा संबंध होगा तो वही होगा, नहीं तो यह आजीवन कुंवारी रहूंगी, नहीं तो मेरा जीवन त्याग दूंगी, लेकिन और किसी जगह मैं अपना संबंध नहीं करने वाली, जिया दिखा करके मरना मैं पसंद करती हूं, उनके सिवाय मैं और कहीं संबंध नहीं करूंगी। बातें सुनी, ज्यादा हट कर लिया, मुझे संसार के भोगों की आवश्यकता नहीं है, मैं तो केवल भक्त का साथ करना चाहती हूं, मैं ऐसे भक्त की स्त्री बनना चाहती हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बातें सुनकर के आ कह दिया महाराज आप इनको कह दीजिए, यदि वो मेरा मरण पसंद करते हैं तो मैं अब कह देंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी उनके लिए। राजा ने दोबारा भेजा और कह दिया कि ऐसी ऐसी बात है, वो मरने के लिए तैयार है। बात सुनी तो अम्बरीश ने कहा कि अगर कोई ऐसी इतना हट करती है तो चलो कोई बात नहीं महाराज, मैं स्वीकार कर लेता हूं, मुझे स्वीकार है, परंतु एक बात है, शादी करने के लिए कम से कम हफ्ता भर तो खराब करना पड़ेगा, नहीं हफ्ता भर तो लगता नहीं, आप लोग मालूम है कि शादी की तैयारी करने में, आने जाने में, आने में, सब प्रकार के काम धंधे में हफ्ता भर का टाइम खराब होता है। मैं इतना टाइम भगवान के भजन में विघ्न नहीं करना चाहता, इसलिए मैं खुद तो शादी करने के लिए चलूंगा नहीं, अब मेरा खड़ग है, तलवार है, ये ले जाइए इसके साथ में, फिर खाकर मैं स्वीकार कर लूंगा, मेरा भेजा हुआ खड़ग है तो मेरा ही प्रतीक है, इसलिए मैं इसे पसंद कर लेता हूं, मुझे इसे स्वीकार कर लेना पड़ेगा। जो बात कही बात स्वीकार कर ली, कोई बात नहीं, इन्होंने अपना लिया बस इतना बहुत है। राजकन्या प्रसन्न हो गई, शादी करके उसके साथ में फेरे खा करके यहां पर आई। अब आने पर आने के बाद उनकी व्यवस्था करने के लिए एक अलग नए मकान का प्रबंध किया कि इस मकान में तुम रहा करो, वो उस मकान में रहने लग गई, मिली नहीं, बातचीत की नहीं, और कोई सुहागरात नहीं, अब केवल इनके नगर में आ गई हूं, इतना मेरे लिए पर्याप्त है, बस मैं इनकी हो गई, भक्त की बन गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मन में संतोष है उसके। अब वहां बैठी है, दिनचर्या उसकी इधर उधर भटकना नहीं, आना नहीं, किसी से बोलना नहीं, चलना नहीं, गुमसुम बैठे रहना, और अब आगे करना क्या, मेरे पतिदेव क्या करते हैं, उनकी गतिविधि क्या है, क्रियाविधि क्या है, उसका पता लगाना चाहिए मुझे, वो भक्ति करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, ऐसी मन में जानकारी की इच्छा हुई। अब दुनिया तो खावे पीवे साथ दाप के रसोवे मन के भाई, दुनिया तो अच्छी तरह खाती पीती है, मौज करती है, नींद देती है, पर जिनके हृदय में विरह वेदना जल रही है, तड़पण है, बताओ उनको नींद कहाँ आती है, इसको रात को चैन बेचैनी है, नींद आती नहीं है, घर के महल के झरोखों में बैठी बैठी देखती रहती है राजा के महल की तरफ, रात को देखा चांदनी रात में उस दिन उसने राजा का महल, महल के ऊपर एक बहुत सुंदर कमरा बना हुआ, उस कमरे में जाने के लिए कहीं भी कोई सीढ़ी नहीं। अब इतना बड़ा सुंदर सफाई किया हुआ तो यह कोई न कोई विशेष बात है, उसके मन में बात आई। कोई विशेषता के बिना किसी कमरे की सजावट करेगा कौन? सजावट हो रही इसका मतलब कोई न कोई इसमें खासियत है। अब उसी का ख्याल करने लगी। आधी रात के बाद में चौथा पहर होता है, राजा अपने कमरे से बाहर निकला, लकड़ी की सीढ़ी वहां लगाई और ऊपर चढ़ करके गया महल में। मैं उस ऊपर वाले कमरे में दरवाजा खोल करके उसने वहां जाकर के ठाकुर जी की, वहां भगवान का मंदिर था ऊपर बड़ा हुआ, भगवान की सेवा पूजा के लिए जो कुछ प्रबंध करना, सेवा पूजा किया, सफाई की, बर्तन साफ करने, चद्दर धोनी, ये धोना, चौका पोचा लगाना, ये सारे काम ठाकुर जी के, मतलब भगवान यहाँ पर आकर के विराजमान होते हैं, पोड़ते हैं, ऐसा भाव उसका, भोग लगाते हैं, जलपान करते हैं, सारी सामग्री वहां पर रख देता था वो, और सुबह की टाइम वो बर्तन साफ करना, करना खुद अपने हाथ से करता। आजकल आप लोग देखते हो बड़े बड़े बंगले बनाने वाले सेठ लोग बंगले बनाते हैं, भगवान का मंदिर भी बना देते हैं बंगले में, परंतु सेवा पूजा के लिए वहां पर सेठ जी को टाइम नहीं है, वहां पर महाराज को पंडित जी को रखते, पंडित जी आप टकुरे बजा दिया करो आकर के, आप भोग लगा दिया करो, आप ये काम कर दिया करो, बना तो दिया लेकिन याद कौन करे, याद नहीं आवे ना। लेकिन खुद का काम तो खुद के करने से होता है, खुद की भूख खुद के खाने से मिटती है, प्यास अपने पानी पीने से मिटती है। राजा अपने हाथ से ठाकुर जी की सेवा करता है, भक्ति श्रद्धा भक्ति भावना रखते हुए, इस तरह रात्रि के समय उस महल में जाने आने का काम करता है। एक दिन देखा, दो दिन देखा, चार दिन देखा, रात देखा, रानी देखा, रोज के रोज ये जाता है, इस महल में जाता है, यहां कोई न कोई चीज विशेष जरूर है। अगले दिन उसने खुद ने विचार किया कि मैं खुद ही, और सीढ़ी कहां रखी वो भी देख ली, जितने बजे राजा जाता चार बजे जाता तो वो तीन बजे उठ गई, वो सीढ़ी उठाई, उठा करके लगा करके ऊपर महल में गई और वाद सफाई का काम उस खुद ने अपने हाथ से कर लिया आज। ओहो, यहां तो ये काम है ठाकुर जी की सेवा का काम, और सफाई पूजा का सारा कर करा करके और वापस चटपट चोर के उतार के जल्दी से जल्दी चलो, जल्दी उतर करके चली आई, अपने महल में पहुंच गई। राजा उतर करके रोज के समान ज्यों ही सीढ़ी लगा के ऊपर गया तो आज तो चोरी हो गई सेवा की। अब राजा घबरा गया कि मेरी सेवा की चोरी आज किसने कर ली, कोई न कोई वास्ते मेरे ऊपर ला चोर आ गया, इसको पता किसको चला आखिर में, मैं कभी किसी से कहता नहीं, किसी के सामने कोई काम करता नहीं, फिर ऐसा काम करने वाला कौन हो सकता है, ऐसे चोर का पता लगाना चाहिए नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। आज राजा की नींद उड़ गई, पूरी रात राजा ने पहरा दिया। दूसरे दिन रानी उसी प्रकार रात को उठी, सीढ़ी लगा करके ऊपर चढ़ी, महल में गई पूजा करने के लिए, पीछे से पीछे राजा पहुंच गया, सामने खड़ी रानी, राजा को देख के प्रणाम किया, उसके चरणों में वंदन किया। कौन, क्या जाने कौन है, कौन पता, राज आप ही की छोटी दासी, अरे तुम यहां कैसे आ गई, किस काम के लिए? महाराज जो काम आप करते हैं वही मेरा करने का कर्तव्य है, जो पति करता है वही पत्नी का कर्तव्य होता है सेवा करना का, आप सेवा करते हैं तो मैं भी सेवा कर्तव्य चाहते हूँ, ये काम मेरा और कुछ नहीं महाराज। अरे पता कैसे चला महाराज, मैं और किससे पूछूं, किसी को, आप तो किसी को बताते नहीं, कौन बताएगा, और आप खुद बताने वाले नहीं, आप तो किसी से मिलते नहीं, तो मैं आपसे मिलूं कैसे, मैंने सीधे यहां पर कामदार से काम नहीं जाए मिलूं दरबार, वो काम किया है तो की गुस्ताखी की है मैंने, गलती की है, अपराध के लिए जो दंड देना दंड दीजिए, लेकिन ये मुझे काम अच्छा लगा इसलिए मैंने प्रसन्नतापूर्वक काम कर लिया है। राजा ने कहा तुम्हें ये भगवत सेवा का काम बहुत पसंद आया है, मैं बहुत प्रसन्न हूं इस बात। संसारी लोग जो होते हैं संसार के भोगों में लगे रहते हैं, परंतु भक्ति का काम किसको पसंद है, ये काम तुम्हें प्यारा है इसलिए नया काम तो मुझे करने दो, इसमें तो कोई दखल मत करो, परंतु तुम्हारे लिए मैं अलग से मंदिर की व्यवस्था कर देता हूं, तुम उस प्रकार वही पर मंदिर में अच्छी प्रकार से भक्ति प्रचार करो, भक्ति करो, सेवा पूजा करो, खर्चे की कोई कमी नहीं है, जो इच्छा तुम्हारी आवश्यकता हो ले हो, और लोगों को भक्ति में लगाओ, भगवान कीर्तन करते रहे। रानी ने कहा जो आज्ञा आपकी आज्ञा सिरोधार्य भक्त। वो महल में चली गई। राजा ने तत्काल नए महल मंदिर का इंतजाम कराइए, मंदिर रानी की सेवा के लिए है। रानी उस मंदिर में प्रेम से सेवा पूजा करने लगे, आरती करती, पूजा करती, कीर्तन करती, भगवान नाम का हरि नाम कीर्तन करती। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, भगवान का जो बड़ा प्यारा कीर्तन है, मैं तो मारे राम जीरा राम जी हमारा है,
मैं तो मारे राम जीरा राम जी है मारा रे,
मैं तो मारे राम जीरा राम जी है मारा रे,
मैं तो मारे राम जीरा राम जी है मारा रे,
राम जी है मारा मन लागे घना प्यारा है,
राम जी है मारा मन लागे घना प्यारा है,
राम जी है मारा मन लागे घना प्यारा है,
राम जी है मारा मन लागे घना प्यारा है,
मैं तो मारे राम जी रा राम जी हमारा है,
मैं तो मारे राम जी रा राम जी है मारा रे,
मैं तो मारे राम जी रा राम जी हमारा है,
मैं तो मारे राम जी रा राम जी है मारा रे,
राम जी है मारा
माने लागे घना प्यारा है, राम जी है मारा माने लागे घना प्यारा है,
मैं तो मारे राम जी रा राम जी हमारा है,
मैं तो मारे राम जी रा राम जी है मारा रे,
मैं तो मारे राम जी रा राम जी हमारा है,
मैं तो मारे राम जी रा राम जी है मारा रे,
मैं तो मारे राम जी रा राम जी हमारा है,
मैं तो मारे राम जी रा राम जी हमारा रे।
बड़े प्रेम भाव से तल्लीन होकर के जो भगवान नाम कीर्तन किया गया, तो बहुत से लोग चलते फिरते मंदिर में आने लग गए। कभी पांच, पांच से दस, दस से बीस, बीस से 200, 200 से 400, हजारों आदमी मंदिर में इकट्ठे होने लगे। प्रतिदिन कई किलो का भोजन बना करके भगवान के भोग लगा करके मिठाई का प्रसाद वितीर्ण होने लगा। चारों तरफ उस नई रानी की महिमा का वखान होने लगा। राजा के कानों में भी यह बात पहुंची कि राजा की छोटी रानी बड़ी भक्ति परायण है, साक्षात मीरा के समान इस प्रकार उसमें सद्गुण है। ऐसे भाव लोगों के द्वारा राजा के कान में पड़े। राजा ने देखा एक तो मैं भी तो जाऊं उस कीर्तन का आनंद ले ना। खुद राजा सामान्य बनकर के लोगों के साथ में मिलकर के संकीर्तन में पहुंच गया और भावपूर्व जो कीर्तन किया जा रहा था उसमें तल्लीन हो गया। ओ हो, इसका जीवन सार्थक है जिसने अपने जवानी अवस्था में भी अपना आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, जो भगवान के बन चुकी है वास्तव में, वो वंदनीय है। बहुत ही इनकी महिमा वर्णनातीत है। इस प्रकार वहां राजा का जाना आना हुआ, किसी ने देखा जाकर के दूसरी रानियों से शिकायत कर दी, राजा तो अमुक रानी के महल में चला गया, नई रानी के महल में चला गया, तुम्हारी कोई पूछ ही नहीं है। दूसरी रानियों ने हड़ताल कर ली, क्यों साहब हमारे तो आपने कह दिया कि हम तुम्हारे यहां आते नहीं, मुझे फुर्सत नहीं, लेकिन उसके महल में कैसे चले गए आप? राजा ने कहा कि उसको बुलाना आता है, तुम्हारे को बुलाना नहीं आता। उसे बुलाना आता है, तुम्हें बुलाना नहीं आता। यदि बुलाना तुम्हें बुलाना है, देखो वो क्या करती है, पहले उसके समान तुम रहो करो, फिर मैं भी कैसे आता नहीं आता तुम्हारे यहां पर। इसलिए दूसरी रानियों ने भी मांग कीर्तन, पहले तो महल में बैठी बाहर निकले कौन? लेकिन जब राजा की ये बात सुनी, कीर्तन में गई, लोगों का प्रभाव देखा, वास्तव में वे भी उसकी अनुगामिनी बन गई, वे भी भगवत भक्ति में कीर्तन में लग गई, तो सब के सब पूरे नगर में भगवान की भक्ति का संचार हो गया, आनंद आनंद हो गया। ऐसे सज्जनों वो नई रानी ने वहां राजमहल में भगवत भक्ति का खूब प्रचार किया, पूरे राज्य में भगवान की भक्ति
राम राम।